हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वो उस कुर्सी पर बैठता है और ब्यूटीशियन से उसका मेकअप सही करने के लिए कहता है। इनायत का चेहरा थप्पड़ों की वजह से सूज गया था और उसकी आँखें रो रोकर लाल हो गई थीं। दुल्हन का वो चेहरा अब मायूसी में बदल गया था। ब्यूटीशियन अपना काम करने लगी, लेकिन इनायत का चेहरा ठीक करते वक्त वो बहुत डरी हुई भी थी। ब्यूटीशियन अपना काम कर रही थी और इनायत किसी जिंदा लाश की तरह बस कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे और हिचकियां अब मायूसी में तब्दील हो गई थीं। वो बस शून्य एक दिशा में देख रही थी। मुराद जल्दी से एक दूसरी कुर्सी लाता है और उसके पास बैठते हुए कहता है, इनायत, तुमने फिर से भागने की कोशिश क्यों की? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम ये गलती दोबारा मत करना, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता कि मैंने ये क्यों किया मुराद, मुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई, ये जानते हुए भी कि इन सब का अंजाम बहुत बुरा होगा, फिर भी मैं जिब्रान के साथ भाग गई, क्योंकि मुझे सच में तुम्हारे भाई के साथ नहीं रहना था। मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ जो मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा था और वो मेरी सारी जिंदगी पर बर्बाद कर देगा? मैं उस इंसान के साथ कैसे रह सकती थी जिसके साथ मैं खुद को कभी खुश महसूस नहीं कर पाऊंगी? मुझे लगा मेरे पास एक आखिरी मौका है जिसे मैं गंवाना नहीं चाहती हूँ और मैं अपने प्यार को पा सकती हूँ। यही सोचते हुए मैं वहाँ से भाग गई। मैंने इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचा। इनायत अपने मायूस और सुर्ख चेहरे के साथ कहने लगती है। उसके हर एक शब्द में सिर्फ उदासी थी और इसके अलावा उसमें और कुछ भी नहीं था। उसका दर्द इस समय मुराद समझ सकता था, लेकिन वो उसे क्या ही कहता। उसने सिर्फ इनायत को सांत्वना देते हुए यही कहा, इनायत, मैंने तुम्हें इन सब के बारे में पहले ही आगाह किया था। अब मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम आगे से ऐसी कोई बेवकूफ़ी ना करो, क्योंकि अंजाम तुम देख चुकी हो। इनायत ने एक सिसकी ली और एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने धीरे से अपनी आंखों की पुतलियों को मुराद की तरफ करते हुए कहा, मुराद, मैं अब किसी चीज़ की परवाह नहीं करती। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा करने से पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा, और जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए तैयार थी। मुझे पता था कि अगर मैं पकड़ी जाऊंगी तो मेरा अंजाम क्या होगा, और अब मुझे इन सब की परवाह भी नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, जो मेरी किस्मत होगी मैं उसे मान लूंगी। पर प्लीज़, तुम अब इस बारे में और बात मत करो। मैं इस बारे में अब कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। और तुम इतने उदास क्यों हो? खुश हो जाओ, आज मेरी रुख्सती है, तुम्हारे भाई की शादी है। क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है? तो जाओ, जाकर बाकियों के साथ खुशियाँ मनाओ। मैं भी यहाँ पर अपनी शादी की खुशियाँ मनाती हूँ। इनायत के चेहरे पर एक दुख भरी मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था वो इस नकली हंसी के पीछे अपने सारे दर्द को छुपा लेगी, पर वो ऐसा करने में नाकामयाब हो रही थी, क्योंकि उसकी वो कांच सी साफ आंखें सब बता रही थीं। मुराद धीरे से अपना चेहरा नीचे करता है और एक सांस छोड़ते हुए कहता है, इनायत, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने रियाज भाई की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। मैं वादा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि रियाज भाई ने अगर तुम्हें जिंदा छोड़ा है तो सिर्फ इसलिए कि उनके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है। वरना जो धोखा तुमने उन्हें दिया है उसके बाद किसी का भी बचकर निकल पाना नामुमकिन था। पर तुम यहाँ पर सही सलामत बैठी हुई हो। अब तक तुमने जो बर्दाश्त किया है वो सिर्फ उनका गुस्सा था और कुछ भी नहीं, और ये गुस्सा वक्त के साथ उतर जाएगा। अगर तुम कोशिश करोगी तो वो तुम्हें माफ़ भी कर देंगे। इनायत ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुराद की सारी बातें सुन रही थी। ब्यूटीशियन ने इनायत का चेहरा फिर से पहले की तरह दुल्हन की तरह सजा दिया था। उसके माथे पर आ रही लटों को उसने बहुत खूबसूरती इनायत के कानों के पास गिरा दिया और उसके नाक की वो बड़ी सी नोज रिंग उसके मासूम से चेहरे पर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रियाज भी वहाँ पर आता है। उसने अपनी शेरवानी सही कर ली थी। वो सीधे इनायत के पास आता है और ब्यूटीशियन के बैग में से कॉम्ब निकालकर अपने बालों को सेट करने लगता है। वो इनायत को देखकर घूमने लगता है, लेकिन इनायत की नज़रें किसी पत्थर सी एक जगह पर टिकी हुई थी। अपनी दुल्हन को तैयार देखकर उसने मुराद की तरफ देखा, तो मुराद जल्दी से नीचे सर करता है और हाँ में सर हिलाता है। वो ब्यूटीशियन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। रियाज धीरे से इनायत के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। इनायत किसी कठपुतली की तरह चुपचाप खड़ी हो जाती है। रियाज आगे बढ़ते हुए इनायत की तरफ देखता है और कहता है, मुस्कुराओ जान, आज हमारी शादी की पार्टी है। बाहर बहुत सारे लोग हैं जो मेरे दुल्हन को देखने के लिए बेकरार है, और मैं चाहता हूँ कि जब वो लोग तुम्हारा चेहरा देखें तो उनके दिल में एक आग लगे कि ये बेहतरीन लड़की अब मेरी बीवी है, तो मुस्कुराओ। इनायत ने किसी कठपुतली की तरह अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ली। ऐसा लग रहा था कि रियाज ने उस पर चाबी डाल दी है और वो किसी चाबी वाली गुड़िया की तरह अपने मालिक के ऑर्डर को फॉलो कर रही है। रियाज इनायत को लेकर पार्टी में आता है जहां पर सारे मेहमान आ चुके थे। रियाज इनायत स्टेज पर आ चुके थे और वहां पर बैठे हुए थे। सिर्फ दुल्हन दुल्हन को छोड़कर सभी लोग वहां पर एंजॉय कर रहे थे। इनायत के दिल में तो बस इस वक्त यही ख्याल था कि ये वक्त यही रुक जाए और वो यहाँ से कहीं दूर चली जाए, उसे कोई छुपा ले और वो किसी को मिल ही ना पाए। उसका पीला पड़ा हुआ चेहरा मेकअप के पीछे छुप गया था और उसकी सांसें, वो तो बस चल ही रही थीं। उसे पता था ये पार्टी एक वक्त के बाद खत्म हो जाएगी और उसे रियाज के साथ अकेले में रहना होगा। उसे महसूस हो रहा था कि आज रात ये इंसान उसकी ज़िंदगी नर्क बना देगा, और वो उसका सामना करने के लिए हिम्मत जुटा रही थी। अब उसके पास बचने का कोई चारा नहीं था, उसे बस अपनी सज़ा का इंतज़ार था ताकि वो उसे बर्दाश्त कर सके। समय बीत गया और पार्टी भी लगभग खत्म हो गई थी। इम्पॉर्टेंट गेस्ट थे जिन्हें दादाजान अटेंड कर रहे थे। एक दुल्हन की तरह सजी हुई कार हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी और इनायत उस कार के सामने खड़ी थी। वो अपनी माँ से गले लगकर रो रही थी क्योंकि ये उसकी रुखसती का वक्त था।